नमस्कार भारत, आज है 9 मार्च दिन गुरुवार और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। यूपी में मतदान का अंतिम दौर समाप्त, अब 11 तारीख का इंतजार। क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है यूपी जीतना?
क्रिटिकल है क्योंकि राज्यसभा में उनकी एमपीज कम है, दूसरा प्रेसिडेंट का भी चुनाव दूर नहीं है और बिहार वो हार चुके थे तो उन्होंने एक तरह से पूरी मेहनत करी है यूपी को जीतने के लिए।
वाराणसी से 7 बार एमएलए रहे श्याम राय चौधरी के मन में टिकट कटने की पीड़ा, मगर तोहमत लगाने वालों को दिया जवाब।
कोई माई का लाल ये कह दे कि हम गलियों को चौड़ा कर देंगे और यहाँ जो है 4-व्हीलर चलने लगेगा तो वो एक नंबर का झूठ बोल रहा है।
केजरीवाल का वकील बनकर राम जेठमलानी कर रहे हैं अरुण जेटली से जिरह, होगा विश्लेषण। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। यूपी और मणिपुर में बुधवार को आखिरी चरण का मतदान हुआ। यूपी में 7वें और अंतिम दौर की वोटिंग में वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर करीब 60% मतदान हुआ। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। इस तरह 60 सीटों वाले मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 86% मतदान हुआ। यहाँ 22 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में मानवाधिकार कार्यकर्ता एरोम शर्मिला मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के सामने थी। सामाजिक कार्यकर्ता एरोम शर्मिला पहली बार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे। लैटिन अमरीकी देश ग्वाटेमाला में ग्वाटेमाला सिटी के एक बाल कल्याण केंद्र में लगी आग में 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग झुलस गए। मरने वालों में बच्चों की संख्या कितनी है ये साफ नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। मंगलवार को कल्याण केंद्र में दंगा भड़कने के बाद पुलिस ने दखल दिया था। यहां से 60 बच्चे भाग गए थे। इस सरकारी बाल कल्याण केंद्र में करीब 500 बच्चे रहते हैं जो हिंसा के शिकार हुए हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 100 बच्चों के रहने की जगह है। आग बुझाने वाले कर्मचारी जॉर्ज मारियो क्रूज ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों ने ही आग लगाई है। जॉर्ज का कहना है,
donde varios reclusos se amotinaron y causaron un incendio en dos sectores.
यहाँ रहने वाले कई लोगों ने 2 जगह आग लगाई, जिसके लिए अग्निशमन इकाइयां भेजी गईं और चिकित्सा की मदद पहुंचाई गई। 3000 गैलन पानी डालने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 25 लोग इस आग में झुलस गए। ये कहना था जॉर्ज का। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने उस दावे को खारिज किया है जिसके मुताबिक उनकी सरकार ने बड़ी कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन की उत्सर्जन धोखाधड़ी के मामले में लापरवाही बरती। संसदीय पूछताछ में मार्केल ने बताया कि उन्होंने पहली बार वॉक्सवैगन डीजल उत्सर्जन स्कैंडल के बारे में सितंबर 2015 में तब पढ़ा था जब खबर मीडिया में आई थी। अब जांच की जा रही है कि क्या जर्मन सरकार निर्माता द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन के मापदंडों के उल्लंघन के बारे में जानती थी या नहीं। इस बीच ये आरोप भी लगा कि वॉक्सवैगन को संरक्षण दिया गया। मार्केल ने पूछताछ में कहा कि ये अफसोसनाक था कि कंपनी ने अमरीकी नियामकों को धोखा देने की कोशिश की। कंपनी ने डीजल उत्सर्जन परीक्षणों को धोखा देने के लिए सीक्रेट सॉफ्टवेयर फिटिंग की बात स्वीकार करने के बाद अमरीका में अब कई अरब डॉलर के समझौतों पर सहमति जताई है। दक्षिण कोरिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने विकिलीक्स के उस दावे पर फौरन जांच कराने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि CIA ने कंपनी के स्मार्ट टेलीविजन का इस्तेमाल कुछ उपभोक्ताओं की जासूसी के लिए किया है। विकिलीक्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो बताते हैं कि अमरीकी जासूसी एजेंसी ने स्मार्टफोन को सुनने और टीवी को इंटरनेट से जोड़ने के तरीके विकसित कर लिए हैं। CIA ने विकिलीक्स पर आरोप लगाया है कि विकिलीक्स एजेंसी के कथित टॉप सीक्रेट लीकिंग टूल को अपनी साइट पर प्रकाशित कर अमरीकियों को खतरे में डाल रहा है। एक बयान में कहा गया कि CIA इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करती, लेकिन इस तरह के खुलासे से अमरीकी जनता बड़ी मुसीबत में आ सकती है। व्हाइट हाउस के शॉन स्पाइसर ने विकिलीक्स की निंदा करते हुए कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। शॉन स्पाइसर ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्गीकृत जानकारियों का खुलासा करने वाले इन दस्तावेजों से ऐसा लग रहा है जैसे इस देश में सब पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह के खुलासे हमारे देश और हमारी सुरक्षा को खोखला करते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक के मोसुल में इराकी सेना ने कहा कि उन्होंने उस जेल को अपने कब्जे में ले लिया है जहाँ जिहादी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करते थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में फैला मतदान बुधवार को खत्म हो गया। प्रचार के खत्म होते होते बयानों में खूब तल्खी दिखी। विकास का मुद्दा गायब हो गया और शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली ने इसकी जगह ले ली। चुनाव प्रचार में किसी भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी, पर आखिरी चरण में जैसी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने डाली, ये चुनाव उनके लिए इतना अहम क्यों बनता गया, ये सब समझने के लिए लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन से बात की बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने।
यहाँ पे दो बड़ी रीजनल पार्टीज हैं और वो दोनों बहुत ही मजबूत पार्टीज हैं, और बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था। उसके अलावा बीजेपी के लिए 403 सीटें जीतना, उसमें से ज़्यादा सीटें जीतना एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है, क्रिटिकल है, क्योंकि राज्यसभा में उनके एमपीज कम हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनके लोग बढ़ जाएं, 6-7 बढ़ जाएं। दूसरा, प्रेसिडेंट का भी चुनाव, प्रेसिडेंशियल पोल भी दूर नहीं है, और 2019 का अगर आप देखें तो 1/4 ऑफ द उनकी जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में वो यूपी से ही गई है, 73, तो उनके लिए 2019 के लिए भी ये इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बिहार वो हार चुके थे, तो उन्होंने एक तरह से पूरी मेहनत करी है पार्टी ने यूपी को जीतने के लिए।
कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आखिरी फेज में बनारस में उनका जो दौरा रहा, उससे ये लगभग एक स्थानीय चुनाव जैसी इसने शक्ल ले ली, और एक प्रधानमंत्री का वहाँ आना अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात दिख रही थी। आप क्या सोचते हैं?
अटल जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे जितना याद है, अटल जी एक दिन देते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो बहुत डिमांड में होते थे और उनको कई जगह जाना होता था, तो वो एक दिन से ज़्यादा नहीं देते थे, और रोड शो तो वो नहीं करते थे। वो अपनी 4-5 जो उनके असेंबली सेगमेंट्स होते थे उसमें वो रैलीज करते थे। अब इन्होंने 3 रोड शोज करे वाराणसी में, जहाँ पे 8 सीट्स हैं, और अगर आप देखें तो वो भी उसके बाद करें जब 40 सीट का चुनाव रह गया था, और वाराणसी में सारे यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह एक तरह से वहाँ कैंप कर रहे थे, पूरा ऑफिस कैंप कर रहा था। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी को लगा कि हम यूपी जीत जाएं और वाराणसी हार जाएं तो बहुत गलत मैसेज आएगा। जैसे पिछली बारी अगर आपको याद हो 2012 में गांधी ने जब अमेठी और रायबरेली लूज किया था, तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक गलत मैसेज कंट्री में जाता है।
नतीजे आने में अभी 2 दिन का वक्त है, पर कोई ऐसी भूमिका किसी पार्टी या किसी ऐसे कम्युनिटी की बाद में जब एनालिसिस होता है कि मत कैसे पड़े होंगे, आप देखती हैं जिससे कि चुनाव के नतीजे में एक बहुत निर्णायक परिवर्तन हो जाए?
ये एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे वोटर्स बिहेवियर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो बदल जाता है। कास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहती है, कास्ट रहता है, यादव मुस्लिम जैसे अखिलेश एंड राहुल जी के साथ हैं, आपके ब्राह्मण्स कांग्रेस एंड बीजेपी के साथ में हैं, ओबीसी जो हैं उनका प्रेफरेंस अब की बारी बीजेपी की तरफ दिखाई दिया, कुर्मी बट रहे हैं, जाटव मायावती जी के साथ है, बाकी नॉन जाटव दलित्स बट रहे हैं। तो अगर आप ट्रैवल करेंगे यूपी में तो आपको हर 25 या 50 किलोमीटर पे फर्क नजर आएगा। कहीं पे आपको बीजेपी लगेगा बहुत मजबूत है, कहीं पे बीएसपी नजर आएगी, और कहीं पे समाजवादी पार्टी बहुत नजर आएगी। तो इसलिए ये इलेक्शन एक बहुत ही जो कहना चाहिए डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इलेक्शन है। तो इसलिए अब की बारी का चुनाव में आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट सरप्राइजेस,
चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं, लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन का अनुमान। और एक तरफ जहां बीजेपी ने बनारस में पूरी ताकत लगा दी, वहीं बनारस में उनकी एक सीट बनारस दक्षिण से 7 बार विधायक रहे उन्हीं की पार्टी के नेता श्यामदेव रॉय चौधरी को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। एक कद्दावर नेता का टिकट कटना इस बार काफी सुर्खियों में रहा। नाराज चौधरी से कल हमारे संवाददाता बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने मुलाकात की, और उनसे चौधरी ने कहा कि अब वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे।
देखिए, मैं ये जरूर अभी भी कह रहा हूँ कि मैं भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन यदि पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो उससे भागूंगा भी नहीं।
पार्टी से आपकी नाराजगी अभी भी जारी है कि वो खत्म हो गई है?
नहीं, वो जो आपने कहा ना कि वो बहुत बीते दिनों की बात हो गई, अब मुझे कोई शिकवा शिकायत है नहीं, और शिकवा शिकायत इतने दिन तक टिका भी रहता नहीं है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है।
एक जो मुझे मैंने कई लोगों से स्थानीय लोगों से बात की है, उनका कहना है कि जो उम्मीदें थी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले कई सालों में विकास नहीं हुआ।
देखिए, विकास से कई अर्थ निकलते हैं। बनारस विश्व का पुरातन नगरियों में से एक है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो गलियों में बसती है।
यहाँ गलियां गंदी हैं, सड़क गंदी हैं, सड़क पे ट्रैफिक जाम है, इसका अंत तो ढूंढने की जरूरत
नहीं। ट्रैफिक जाम तो मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक जाम, आप विश्वनाथ गली में प्रवेश करिएगा तो 4 फुट का 5 फुट की गलियां हैं। वहाँ की वही विशेषता है। कोई अगर कहे, कोई भी विधायक बनने वाला प्रत्याशी, कोई माई का लाल ये कह दे कि हम गलियों को चौड़ा कर देंगे और यहाँ जो है 4-व्हीलर चलने लगेगा, तो वो एक नंबर का झूठ बोल रहा है।
क्या बनारस क्योटो बन सकता है?
अब क्योटो को तो हम गए नहीं हैं, बहुत से लोग गए हैं, देख के आए हैं, वही बता सकते हैं। हम तो क्योटो गए नहीं हैं, वहाँ की क्या विशेषताएँ हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उसका नाम बार बार आ रहा है तो निश्चित है कि वहाँ की कुछ विशेषताएँ होंगी।
आपको पहली बार कब पता चला कि आपको टिकट, कि आपको इन्फॉर्म कैसे किया गया?
वो तो पेपर में निकला, जिस दिन लिस्ट आउट हुआ उस दिन मैंने पाया कि मैं नहीं हूँ, कोई और है।
आपका रिएक्शन क्या था?
अब रिएक्शन क्या होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, किसी को भी होगा। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जिसको शायद ही कोई जानता है, ऐसे व्यक्ति को शहर दक्षिणी जैसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दे दिया गया।
मोदी जी जब आए थे बनारस में, क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई थी?
हाँ, बिल्कुल हुई थी।
क्या बात हुई थी
उनसे? नहीं, बात कुछ नहीं हुई, और अगर कुछ हुई भी तो वो सार्वजनिक करने की नहीं है।
लेकिन बीजेपी के नेता ये लगातार इस तरह की बातें अखबार में भी हैं, और प्लीज़ कंफर्म करिए कि आपको मनाने की कोशिश की गई, आपसे क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, आपको बड़ा समझाया गया?
बच्चा उठा हुआ है, रो रहा है कि उसको पिता चाचा भाई मनाएंगे इस एज में। हम
आप रूठे तो हुए थे, आप नाराज तो थे जब
पीड़ा थोड़ी हुई थी, बस पीड़ा हुई थी। वो पीड़ा लोगों को जानकारी हो गई कि ये पीड़ा वाजिब है।
पार्टी में रहेंगे आप?
अरे बिल्कुल साहब, मरते दम तक रहेंगे।
ये थे बनारस दक्षिण से 7 बार विधायक रह चुके श्याम देव राय चौधरी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
हाई प्रोफाइल मर्डर हो या घोटाले या फिर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे, दिग्गज वकील राम जेठमलानी हमेशा लहर के खिलाफ ही तैरते नजर आए। इस बार भी वो चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने एक और जाने माने वकील और भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अदालत में मोर्चा संभाला है। जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है जिसकी सुनवाई चल रही है, और इसमें अरविंद केजरीवाल के वकील हैं जेठमलानी। आखिर राम जेठमलानी बड़े विवादित मुकदमों से क्यों जुड़ जाते हैं, इसे समझने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से बात की दिव्या आर्य ने।
देखिए, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के आरोपियों का मामला था, उसमें भी आरोपियों के वकील राम जेठमलानी थे। फिर राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों के वकील भी रहे, अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के वकील रहे। जेसिका लाल हत्याकांड में जो अभियुक्त थे उनके भी वो वकील रहे, हालांकि सजा हो गई जेसिका लाल हत्याकांड में। सोहराबुद्दीन हत्याकांड में वो अमित शाह के वकील रहे। उसी तरह से चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के वकील रहे, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जय जयललिता के वकील रहे। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कनिमोई के वकील रहे, और अवैध उत्खनन का जो मामला था कर्नाटक का, जैसे आपको पता है उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, उनके भी ये वकील थे। आसाराम बापू के वकील हैं, बाबा रामदेव के वकील हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, सुब्रत राय के भी वकील हैं,
और वो बहुत ही एक कद्दावर वकील हैं। तभी उन्होंने इस तरह के मामले लिए और पक्ष भी वो लिया जो लड़ना ज्यादा मुश्किल था। और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्होंने कानून की डिग्री ले ली थी।
जी, 13 साल की उम्र में मैट्रिक भी पास किया था डबल प्रमोशन लेने के बाद, और उसके बाद जब मैट्रिक कर ली उन्होंने और जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो बाकायदा जज से परमिशन हुई, और जज को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी क्योंकि उनको अपीयर नहीं होने दिया जा रहा था। 17 साल की उम्र में कोई कानून की पढ़ाई नहीं कर सकता था, उस वक्त अविभाजित भारत में कराची का ये था। तो उस वक्त जो जज को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को पढ़ के जज इतना भावुक हो गए कि उन्होंने परमिशन दे दी, और सबसे कम उम्र के ये वकील हुए। और इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इनके साथी भी एक थे जो उनके साथ पढ़ते थे, तो वो दोनों लोग सोचिए कि बाद में जाकर एक वकील लॉ मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, और आपको पता ही है कि राम जेठमलानी भी दो टर्म लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं भारत में।
वैसे राजनीति में उनका सफर भी काफी मजेदार रहा है। आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा चुका है।
जी बिल्कुल, ये तो अभी के 2013 का डेवलपमेंट है ये, और उससे पहले इनका राजनीति में जो सफर शुरू हुआ वो आपातकाल के दौरान दरअसल शुरू हुआ, और उन्हें उस दौरान इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ भाषण देने और उनकी आलोचना करने की वजह से उन्हें भागकर कनाडा जाना पड़ा। और कमाल की बात यह है कि 1977 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उन्होंने कनाडा में रहकर यहाँ पर चुनाव लड़े थे और वो उसमें जीत भी गए थे। ये बॉम्बे की उत्तर पश्चिमी सीट थी, और उसके बाद अगली बार जो चुनाव हुए उसमें भी वो जीते। हालांकि 1985 में फिर सुनील दत्त कांग्रेस के थे, उनसे ये हार गए, और फिर बाद में 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया। हालांकि अपने राजनीतिक सफर में उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो अवसरवादी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी पार्टी बना ली, कभी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। राम जेठमलानी का जैसे आपको याद होगा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं, और इतना ही नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने अपना उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी।
राम जेठमलानी के बारे में बात कर रहे थे सलमान रावी। और अब आज छपे अखबारों की कुछ मुख्य खबरें जिन पर तृप्ति श्रीवास्तव नजर दौड़ा चुकी हैं। तृप्ति, क्या कहते हैं आज के अखबार?
अपूर्व जी, वैसे अगर देखा जाए तो आज के ज़्यादातर अखबारों में जो है लखनऊ में कथित चरमपंथी सैफुल्ला को मारा है पुलिस ने, वो हर अखबार में हेडलाइन है। और ख़ास बात यह है कि हर अखबार में अलग अलग एंगल दिया गया है उसी खबर को। हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ में चरमपंथी सैफुल्ला मारा गया उसके लिए हेडलाइन दी है कि ये IS से है या नहीं, और इसको लेकर केंद्र जो है UP पुलिस से नाराज़ है। इसमें लिखा है कि बुधवार सुबह मारे गए सैफुल्ला को लेकर UP और मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत जल्दी नतीजों पर पहुंच गई थी, जबकि अभी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। अखबार ने गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह भी लिखा है कि दोनों राज्यों के अधिकारियों को समय से पहले टिप्पणी देने से पहले संयम बरतना चाहिए था। हम पहले भोपाल उज्जैन ट्रेन में हुए विस्फोटों की जांच कर सकते थे और बाद में गिरफ्तारी कर सकते थे, कोर्ट दिया है कि गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का हिंदुस्तान टाइम्स ने। वहीं इसी खबर पर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पुलिस शूटआउट में मारे गए चरमपंथी सैफुल्ला को 1 साल पहले चरमपंथी संगठन IS से प्रेरित एक और चरमपंथी संगठन का हेड बनाया गया था, मिलिट्री हेड बनाया गया था। और पिछले साल एक संदिग्ध ने फरवरी में NII को पूछताछ में बताया था कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी थी, और दस्तावेज उस पूछताछ के ये बताते हैं कि सैफुल्ला को UP में नए इस्लामिक स्टेट सेल के लिए हथियार जमा करने और ट्रेनिंग का काम सौंपा गया था, और उन पर कई महीने तक ऑनलाइन सर्विलांस भी था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन प्रयासों ने बाद में गति खो दी, जिसका ये नतीजा निकला। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कि सैफुल्ला ट्रेनों को उड़ाना चाहता था और उसकी अन्य चरमपंथियों के चुनाव के बाद होली के आसपास ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। अगर एक और दूसरी खबर की बात करें तो जनसत्ता ने भारत में जो आतंकी हमलों की साजिश में अमेरिका में एक भारतीय को 15 साल की सज़ा हुई है उसको अपने फ्रंट पेज पे छापा है, और उसमें लिखा है कि खालिस्तान आंदोलन के दस्तावेज और संसाधन मुहैया करवाकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए अमेरिका में 42 साल के एक भारतीय नागरिक बलविंदर सिंह को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब मैं आपको एक और दिलचस्प खबर बताती हूँ जो अमर उजाला में अंदर की तरफ है, और उसमें यह कि आजकल जो ट्रोलिंग चल रही है उसका एक शिकार हुई है महिला। बेंगलोर में कन्नड़ रियलिटी शो में भजन गाकर एक मुस्लिम युवती कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि फेसबुक पर मैंगलोर मुस्लिम नाम के ग्रुप ने पोस्ट डालकर सुहाना सईद नाम की इस महिला पर समुदाय की छवि खराब करने का आरोप लगाया है, और इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि तुम ये मत सोचना कि इस मंच पर दूसरे धर्म के मर्दों के सामने गाना गाकर और जजों की तारीफ हासिल करके कोई बड़ी उपलब्धि पा ली है।
बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहां, अमेरिका में भारतीयों पर पिछले दिनों में बड़े हमलों पर मोहनलाल शर्मा ने तैयार किया है इस सप्ताह का दुनिया जहां।
दुनिया जहां,
ऑन दैट डे द वेदर वाज जस्ट सो परफेक्ट दैट नाइदर ऑफ अस कुड यू नो डू व्हाट वी डू रेगुलरली यू नो वर्क टिल 7 o'clock एंड देन गो होम।
वो शाम बाकी दिनों से अलग बेहद सुहावनी थी। एक रेस्तरां में श्रीनिवास और मैं बियर पी ही रहे थे कि एक आदमी अचानक हमारे पास आया और उंगली दिखाते हुए बोला कि किस देश से हो तुम, क्या तुम यहाँ अवैध रूप से रह रहे हो। हम वहां से बाहर निकल ही रहे थे कि वो वापस आया। उसके हाथ में गन थी। अगली आवाज उस गन से निकली गोली की थी। अगले ही पल मैं जमीन पर था। मैं चिल्लाकर मदद की गुहार लगा रहा था कि मुझे और मेरे दोस्त को गोली लगी है।
I was yelling for everybody, like, you know, help, help, I got shot.
फरवरी में जब अमरीकी राज्य कैंसस के ओलेथ में अमरीकी कंपनी गार्मिन में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला पर हमला हुआ तो उनके दोस्त आलोक मदसानी उनके साथ थे। एक गोली उन्हें भी लगी, वो बच गए, लेकिन श्रीनिवास उनकी तरह से भाग्यशाली नहीं थे। हमले के बाद पुलिस अधिकारी उनकी पत्नी सुनैना के पास पहुंचे।
टू कॉप्स केम, दे नॉक्ड ऑन द डोर, दे आस्क्ड माय नेम।
दो पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, श्रीना का नाम, उनकी जन्मतिथि पूछी। फिर उन्होंने मेरे सामने वो शब्द कहे। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है, लेकिन
श्रीनिवास कुचिवोतला की मौत के डेढ़ हफ्ते बाद ही अमेरिका के सिएटल में एक और भारतीय सिख पर हमला हुआ। उन्हें हाथ में गोली लगी। खबरों के मुताबिक हमलावर उन्हें अपने देश वापस लौटने के लिए कह रहा था। मैंने अमेरिका में डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की और पूछा कि प्रवासी भारतीयों पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं।
जो सिख पर हमले होते हैं वो बेसिकली 1979 से, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है उसके खिलाफ, जब से इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट अमेरिका में आई है, वो आयतुल्ला खुमैनी को देखकर, उनकी तस्वीरों को देखकर, टर्बन और बड़ी दाढ़ी को वो इस्लाम से कनेक्ट करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद अगर आप बिन लादेन के फोटोग्राफ और उसकी टर्बन और बियर्ड देखते हैं तो उनको बस वही खुमैनी और बिन लादेन का कनेक्शन करके वो इन पे हमला कर देते हैं। ये जो दूसरा कैंसस में जो इंडियन अटैक हुआ वो क्लियरली रेशियल हेट्रेड है, वो एक एक बिल्कुल एंटी फॉरेनर एंटी इमिग्रेंट अटैक था।
भारतीय समुदाय में पिछले दिनों अप्रवासियों और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप के बयानों को लेकर चिंता रही है। मामला सिर्फ एक या दो अमरीकी राज्यों का नहीं बल्कि बात पूरे अमरीका की है। इस तरह के हमलों के बाद वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय को झटका लगा है। न्यूयॉर्क में एक गारमेंट स्टोर चलाने वाली भारतीय मूल की महिला कहती है,
सब लोगों में दहशत फैली हुई है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, तो किसी को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अमेरिका में रहते हैं, सब अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स होते हुए भी हमारे दिलों में इतनी दहशत वो पैदा हो गई है कि क्या होगा। यही सब लोग सोच रहे हैं कि कल को क्या होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है इधर हमारे इस एरिया में।
सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह यानी कि नफरत भरे हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद में अपने पहले भाषण की शुरुआत में ही नस्ली भेदभाव और उससे प्रेरित हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की थी। अमेरिका में भारत ही नहीं, दुनिया भर के देशों के लोग अच्छी नौकरी और बेहतर जीवन शैली की तलाश में आते हैं, बाद में बस भी जाते हैं। आजकल अमेरिका में इस बात की चिंता काफी है कि विदेशी मूल के लोग अच्छी नौकरियां ले लेते हैं और इससे वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी पाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। ट्रंप भी अमेरिका की नौकरियां देश के बाहर न जाने की बात कहते हैं, तो क्या इससे अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ रहा है? प्रोफेसर मुक्तदर खान,
ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो खासतौर से जो साउथ अमेरिका से जो इलीगल इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है उसके वजह से अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम वाइट कम्युनिटी थी उनके लिए बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के, बगैर स्किल्स के अब अच्छे जॉब नहीं मिलते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक अजीब सी बात कही कि जॉब्स वापस आ रहे हैं, जॉब्स कोई वापस नहीं आ रहे हैं अमेरिका।
भारतीय समुदाय चिंतित भी है और डरा हुआ भी, लेकिन वो इन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका में सिख समुदाय के लिए काम करने वाले संगठन सिख कोएलिशन के नेता जसमीत सिंह,
दहशत तो आती है उसके साथ, कम्युनिटी में ये भी है कि हेट है, ऐसा जो सा गलत प्रचार हो रहा है उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ किस तरीके से कोलिशन बिल्डिंग कर सकते हैं। सो दोनों तरीके से, एक तरह से तो थोड़ी निराशा आएगी है कि ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ अंदर से मजबूती भी आ रही है किस तरीके के साथ ऐसी चीजों को डील करना है।
और शायद यही वजह है कि कैंसर्स में अपने पति श्रीनिवास को खोने के बाद सुनैना की चाहत है कि वो नफरत का जवाब प्यार से देंगी।
We should go back and never come back to this country. But now,
इस घटना के बाद मैंने कहा हम कभी इस देश में वापस नहीं आएंगे, पर अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ के लोगों को ये दिखाने के लिए वापस आना होगा कि तुमने मेरे प्यार को छीना, लेकिन मैं प्यार बांटने के लिए यहाँ आऊंगी।
But I'm here to spread love.
अमेरिका में पिछले दिनों भारतीयों पर हुए हमलों के बारे में ये थी दुनिया जहान की रिपोर्ट मोहनलाल शर्मा की। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। और अमेरिका से ही जुड़ी एक कहानी इस वक्त हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर है, जहां महिला दिवस पर अमेरिका में महिलाओं ने हड़ताल की है। खबर कहती है कि दुनिया के कई देशों में महिलाएं हड़ताल रैलियां और प्रदर्शन कर रही हैं, और अमेरिका में खास तौर पर डे विदाउट अ वुमन नाम की एक मुहिम के समर्थन में महिला सांसदों ने भी हड़ताल की। इस मुहिम का मकसद अमेरिका में काम करने वाले लोगों के बीच महिला कामगारों की अहमियत को उजागर करना है। माना जा रहा है कि इसके कारण वहाँ हजारों महिलाएं काम पर नहीं आएंगी या खर्च नहीं करेंगी, ताकि अर्थव्यवस्था में वे अपनी ताकत को महसूस करवा सकें। कई जगहों पर दफ्तरों और व्यवसायों ने खुद ही महिलाओं को रैलियों में जाने के लिए छुट्टी दे दी है। कुछ हिस्सों में महिला कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण स्कूलों को बंद करने पर भी मजबूर होना पड़ा है। एक और खबर बीबीसी हिंदी वेबसाइट पर ही है, वो जोहानिसबर्ग की, कि वहाँ पर फिल्मी स्टाइल में एक लूट हुई, जहाँ पुलिस की पोशाक पहने लुटेरों ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग हवाई अड्डे पर एक कंपनी के लाखों डॉलर लूट लिए। हवाई अड्डे के जिस इलाके में बाहर का कोई आदमी नहीं जा सकता, वहाँ ये लोग बगैर किसी रोक टोक के पहुँच गए और चुपचाप सामान लेकर बाहर चले आए। हवाई अड्डे का कामकाज सामान्य रहा, किसी भी यात्री पर लूट का असर नहीं पड़ा। तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर फिलहाल खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। बेंगलुरु टेस्ट में मिली जीत का फायदा जहां टीम इंडिया के दोनों स्टार स्पिनर्स को हुआ है, वहीं कैप्टन विराट कोहली को खराब बैटिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ऐसे पहले दो स्पिनर बन गए हैं जो एक साथ टॉप पर बने हुए हैं। आईसीसी की तरफ से बुधवार को जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में अपने साधारण प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली फिसल कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी की टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मिली 75 रनों की जीत से भारत ने पहला स्थान बरकरार रखा है। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली से जब हमने पूछा कि अब अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम की रणनीति क्या होगी,
वो तो प्रार्थना कर रहे होंगे कि उनको स्पिनिंग पिच ना मिले, क्योंकि अगर बराबर की पिच मिलेगी तो अच्छा मैच होगा। मैचेस अच्छे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे मैचेस नहीं हुए, लेकिन वो प्रार्थना ये करेंगे कि वो टॉस जीत जाएं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता होता तो ये भारत को चौथी पारी खेलनी पड़ रही होती, जो बहुत मुश्किल होती है इन पिचेस पे।
तो अब बारी है रांची की पिच की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 16 मार्च से। कल इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ मैच शुरू हो गए। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल का सामना मौजूदा चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा से हुआ। खेल समाचारों में बस इतना ही, नमस्कार।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। यूपी और मणिपुर में बुधवार को आखिरी चरण का मतदान हुआ। यूपी में 60% और मणिपुर में 86% मतदान हुआ। लैटिन अमरीकी देश ग्वाटेमाला में ग्वाटेमाला सिटी के एक बाल कल्याण केंद्र में लगी आग में 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग झुलस गए। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने उस दावे को खारिज किया है जिसके मुताबिक उनकी सरकार ने बड़ी कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन के उत्सर्जन धोखाधड़ी के मामले में लापरवाही बरती। दक्षिण कोरिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने विकीलीक्स के उस दावे पर फौरन जांच कराने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि CIA ने कंपनी के स्मार्ट टेलीविजन का इस्तेमाल कुछ उपभोक्ताओं की जासूसी के लिए किया था। इराक के मोसुल में इराकी सेना ने कहा है कि उन्होंने उस जेल को अपने कब्जे में ले लिया है जहाँ जिहादी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करते थे। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात 7:30 PM दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी दिया आज अजीत साथी ने। अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।